सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। 49 मेंबर का जो रिपब्लिकन मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर, उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किए थे और उन्होंने कहा जी के जो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, 10,000 माइग्रेंट्स जो कि हर रोज जो है वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर मेक्सिको से यूएसए में, उसके ऊपर कोई काम करने की जरूरत है। सेनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने आज बाइडन साहब को कहा कि ये जो है चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं हमारे सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर और इनको रिजॉल्व करने का जो है टाइम आ गया है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेचकॉफ ने बड़ी खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा शुक्र है कि अमेरिका के अंदर भी कुछ सोबर माइंड्स हैं और व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिकन सिटीजन जो आम है उनकी जेबों से पैसे निकाल निकाल के यूक्रेन की वॉर की भट्टी में जलाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि वो फर्नेस जो है यूक्रेन वॉर की उसमें डालते जा रहे हैं और ये पैसा सारा उड़ाते जा रहे हैं, ये इतना जाया कर रहे हैं। इससे पहले बाइडन साहब ने यह भी कहा था कि अगर हमने पुतिन साहब को ना रोका और पुतिन साहब ने यूक्रेन को ओवररन करने के बाद जो है अगर वो किसी नेटो इलाके के ऊपर जो है वो कर देगा तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जो आज तक मैं रिजिस्ट कर रहा था कि अपने अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेज रहा था इस वॉर में, वो शायद फिर हमको जो है भेजने पड़ सकते हैं। बहरहाल जी, ये आज इनकी ब्लॉक कर दी गई जो बिड थी फॉर अनदर 106 बिलियन डॉलर जो है उसको रोक दिया उन्होंने। द गार्डियन की आज एक खबर है जी, और द गार्डियन की इस खबर के मुताबिक फुल्टन काउंटी प्रोसिक्यूटर्स जो है वो अब चाहते हैं जॉर्जिया के अंदर जो क्रिमिनल केस है ट्रंप साहब के अगेंस्ट उसमें इनको प्रिजन सेंटेंस देना। वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके टॉप एलाइज जिन्होंने के अलेजली वायलेट किया था ये 2020 का जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उनको ओवरटर्न करने की कोशिश की थी, और पहले जो एक रिपोर्ट आई थी जो ईमेल्स के थ्रू की गई थी फुल्टन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैनी विल्स और उनके जो डिफेंस लॉयर्स थे उनके बीच में वो नहीं की गई थी, रिपोर्ट नहीं की गई थी, आज उन सबको जो है सामने लेकर आए हैं और वो कहते हैं जी कि हमको एक लीगल स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है ताकि नेक्स्ट ईयर एक पोटेंशियल ट्रायल इनके ऊपर चलाया जा सके। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि हम इनको जो है प्ली अग्रीमेंट्स देने की कोशिश करेंगे ट्रंप साहब को अगर वो इसके लिए एग्री कर गए, और इनके जो फॉर्मर व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं मार्क मेडोज को और जो इनके फॉर्मर इलेक्शन लॉयर हैं रूडी जूलियानी को, लेकिन हमें लगता है कि इनके ऊपर जो है एक ट्रायल चलाने की जरूरत है इन सब चीजों पे, और इनको जो है प्रिजन सेंटेंस भी देने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस जो हैं आज उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल काम करते हुए आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर जो है वो इन्वोक किया है। बड़ा ही रेयर होता है ये, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो करते नहीं है बिकॉज ऑफ इसराइल्स एक्ट ऑफ एग्रेशन इन गाजा। 15 मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको उन्होंने कहा जी कि एक रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर हमको पास करने की जरूरत है बिटवीन इसराइल एंड हमास। उन्होंने एक लेटर लिखा है सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को और उन्होंने कहा कि इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर कंडीशन जो है आम सिटीजन की बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की जरूरत है, और इसके बारे में वो तकरीबन अक्टूबर 18 से ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि ह्यूमन सफरिंग बेताजा बढ़ गई है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन है, कलेक्टिव ट्रॉमा है। आर्टिकल 99 जो है वो एक वाहिद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल टूल है जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में सेक्रेटरी जनरल को दिया गया है। इसके अलावा उनके पास कोई खास पावर्स नहीं है। इसके अंदर वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला सकते हैं और एक इनिशिएटिव ले सकते हैं और वार्निंग्स इशू कर सकते हैं अगर वो देखते हैं कि कोई कंट्री इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और वो कह रहे हैं आप जी के फौरन जो है सीज फायर रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, जिनके के पास वीटो की पावर्स हैं, और जब अभी 18th को ये इस तरह का रेजोल्यूशन आया था तो उसमें यूएसए ने जो है इसके अगेंस्ट जो था वो वोट किया था, यानी कि पॉज की कोई बात या सीज फायर की बात की थी तो यूएस ने इसको वीटो किया था और बाकी 12 मेंबर्स ने इसके फेवर में बात की थी और रशिया और यूके ने इसमें से एब्सटेन किया था उस वक्त की रेजोल्यूशन के लिए। तो अब एंटोनियो गुतरस साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमको फौरन ये सीज फायर करना चाहिए क्योंकि वहां पे सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। द गार्डियन की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब, उन्होंने तो आज बहुत ज्यादा सख्त बयान दिए और उन्होंने कहा जी कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको के डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा के अंदर, तो उसका वो ना समझा जाए, अगर उसको पास किया जाएगा कि मैं उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस समझूंगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या कि मैं उसको जो है किसी के खिलाफ यूज करूंगा और अपने एमपीज जो हैं टोरी लॉ मेकर्स जो हैं उनको पार्लियामेंट से आउट करने की कोशिश मैं करूंगा। आपको पता ही है कि इनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो जो है बहुत ज्यादा इस मसले की वजह से जो है लोगों की बैड बुक्स में ही आप समझ सकते हैं कि आई हुई है, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर जो इनके टोरी लॉ मेकर्स हैं वो इसके खिलाफ भी हैं। ये सारी की सारी बात उस वक्त शुरू हुई थी जिस वक्त ये कहा गया था कि भाई ये जो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स इंग्लैंड के अंदर आते हैं उनको एक सेफ थर्ड कंट्री में भेजा जाए जो कि रवांडा है। बहुत सारे लोग रवांडा से ही आते हैं और वो कहते हैं जी हम प्रोसिक्यूशन वहां से, यानी कि हमें जो है धमकियां दी जाती हैं और हम जो है रेफ्यूजी असाइलम लेते हैं यहां पे, और रेफ्यूजीज हैं और असाइलम लेते हैं और हम अगर वापस जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, तो ऐसा ना करें। इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी इसको कहा था कि ये अनलॉफुल है, ये इनको इमिग्रेंट्स को रवांडा में नहीं डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऋषि सुनक ने आज इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे तो इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये हम इसको आज हमने इंट्रोड्यूस किया है और इसके ऊपर जो फर्स्ट वोटिंग होगी वो ट्यूसडे नेक्स्ट वीक होगी, और मैं जो है ये चाहता हूं कि इसको फौरन पास किया जाए ताकि ये जो बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंग्लैंड के अंदर आ रहे हैं उनको रोका जाए, जो खास तौर पे बोट्स पे बैठ बैठ के आ रहे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। और जो है अगर मुझे इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है तो भी मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा और तो भी मैं ये जो है डिसीजन लूंगा। अभी कुछ दिन पहले जो इनके इमिग्रेशन मिनिस्टर थे रॉबर्ट जैरिक, उन्होंने क्विट कर लिया था सुनक साहब की कैबिनेट से और उन्होंने कहा था कि मैं इतना जो है वो दूर नहीं जाना चाहता हूं और मैं इसको जो है वो रोकना चाहता हूं, लेकिन सुनक साहब जो है वो बड़े डटे हुए अपनी जगह पे, वो कहते हैं नहीं जी हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट, और विलेज टेस्ट की पहले जो लोकेशन थी वो मिसिसागा में थी, अब वो ओकविल में लेकर आ गए हैं। 2294 लेक शोर रोड वेस्ट इनका नंबर है जी 9052262294। और जनाब नान एंड कबोब की भी नई लोकेशन आ गई है, हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा हेल्दी ग्रिल खाना होता है इनके पास, 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फर्मी 3 पे होते हैं। अगर इनके पास भी आपको ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9052829797। और जनाब ग्रिल एंड चिक पे आपको पता ही है कि पहले इनकी भी ब्रैम्पटन के अंदर एक लोकेशन थी 15 मॉन्टपेलियर ड्राइव पे और स्ट्रीट पे, और अब जो है ये आ गए हैं मिसिसागा में 3525 प्लैटिनम ड्राइव पे। और इनके पास भी अगर आपको ऑर्डर्स डालने हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9056062345। एंड जनाब चांदनी बैंक्वेट हॉल, आपको पता ही है कि बहुत जबरदस्त ये चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल जो है, इसके अंदर 1400 लोगों की आप दावत कर सकते हैं अपने बिजनेसेस या कि आपके कोई घर के फंक्शन है, तो 1400 प्लस टाई जो कि मैं आपको कहती हूं कि मैं मजद भाई और आमिर भी आप बुला सकते हैं यहां पे, और बहुत ही जबरदस्त ह्यूज किस्म के इनके हॉल्स हैं, बड़ा खूबसूरत एम्बियंस है, तो आप बुक करने के लिए इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823 के ऊपर। अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर जो बीबी जरदारी हैं उन्होंने अब अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बहुत ज्यादा तेज कर दिया है, और आज उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं पता है कि ये गेट नंबर 4 की पॉलिटिक्स क्या है, या लोग जो हैं ये मुझे पता है कि ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पुराने जो हैं ये आते हैं और रिवेंज के लिए आते हैं, उनको इसी तरह की एक पॉलिटिक्स पता है, हमको इसको खत्म करने की जरूरत है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुल्क की कंडीशन जो है बहुत खराब है और मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूं जिसके हाथ साफ हैं। भैया अभी आपको मौका ही नहीं मिला ना, मौका मिलेगा तो फिर पता चलेगा। बहरहाल कहते हैं जी मेरे हाथ बिल्कुल साफ है और मैं जो है ये ना तो पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज ना टिकटॉक पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बिलीव करता हूं, तो मुल्क के ऊपर काम करने के लिए और उसको इस मुश्किल से निकालने के लिए हमको अच्छी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आज ये सारी बातें उन्होंने उस वक्त की जब ये एड्रेस कर रहे थे अपने वर्कर्स कन्वेंशन से केपी के शंगला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो है अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जो हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने आज DGISI को कहा है जनरल नदीम अंजुम को कि ये जो ऑडियो लीक हुई है बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की वाइफ हैं और उनके जो लॉयर हैं लतीफ खोसा साहब के बीच में, उसकी पूरी प्रोब बिठाने की जरूरत है। FIA जो था उसने कहा था कि हम फाइंड और FIA को उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें कि इसके ओरिजिन्स क्या हैं, कहां से ये लीक हुई है सारी चीज। ये जो वीडियो लीक हुई थी इसके अंदर खोसा साहब जो हैं बुशरा बीबी के साथ बात कर रहे थे और उसके अंदर कुछ फैमिली के मैटर्स भी डिस्कस कर रहे थे, और जो कि कहा जा रहा है कि ये खोसा साहब ने ये प्ली डाली थी कि उन्होंने कहा था जी कि मेरा जो क्लाइंट के साथ एक है उसका सीक्रेसी का जो क्लॉज है उसकी ये ब्रीच हुई है और प्रिवेसी की ब्रीच हुई है, तो इसके ऊपर आप एक आपको हियरिंग बिठाने की जरूरत है, वही हियरिंग ये सुन रहे थे। इसके अलावा जो जज बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने इशू किए हैं नोटिसेज FIA को, पेमरा को, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को, कि आप बताएं कि ये सारी की सारी वीडियो लीक कहां से हुई, और इसकी हियरिंग उन्होंने अब जो है 11 दिसंबर तक एडजर्न कर दी है। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और उसके मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो दुनिया में बड़ा शोर इस वक्त मचा हुआ है कि हम इलीगल फॉरेनर्स को पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, हमको निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं बढ़ गई हैं, जिसका कि पता चला कि ये इलीगली या डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो अफगान्स रह रहे हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ये सारी की सारी चीज ली। आज ये पिशावर को विजिट कर रहे थे और वहां पे उनको सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफ किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं ये जारी रहेंगे और ये उनके खिलाफ हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हमारे मुल्क में आए हुए हैं और ये पाकिस्तानियों को के मारने में उनको इन्वॉल्व हैं। अभी तक 2,55,029 इलीगल रेजिडेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान वापस KP से जा चुके हैं। इसके अलावा 250,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो तुर्कम बॉर्डर से जा चुके हैं, 3,516 एंड 698 जो हैं वो अंगोर और अदा और खरलाची के इलाके जो हैं, अंगोर अदा और खरलाची के इलाके जो हैं उनसे वापस जा चुके हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा जी कि ये जो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज KP और बलूचिस्तान में बढ़ गई हैं उसके रहते हुए गवर्नमेंट ने ये लिया है मेजर और उसके साथ सबको खड़ा रहने की जरूरत है। इमरान खान साहब ने जी आज अपनी पटिशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में, चैलेंजिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डिसीजन थी कि इनको 5 साल के लिए पॉलिटिक्स से डिसक्वालीफाई किया जाए, उसके लिए August 8 को ECP ने इनको डिसक्वालीफाई किया था तोशाखाना केस में, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि उन्होंने ना तो डिटेल्स बताई थी और एज प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बहुत गलत फायदे उठाए थे तोशाखाना से चीजें लेके, उनको हाइड किया, उनको बेचा और चीट किया और फॉल्स और इनएक्यूरेट जो है वो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दी, और वो जो है उसके ऊपर इन्होंने कहा था जी कि हम कोर्ट को कहते हैं कि इनके ऊपर एक ट्रायल जो है बिठाएं। आपको पता ही है कि इनको ECP ने कहा था कि इनको डिसक्वालीफाई हम करना चाहते हैं अंडर आर्टिकल 63(1)(h) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यह हुआ था कि August 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी उसने इमरान खान साहब की जो सेंटेंस थी इस केस में वो सस्पेंड कर दी थी, तो आज उसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने फिर से पिटीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में डाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अब उसने पिटीशन सुननी शुरू की है जी नवाज शरीफ साहब की इन अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस, और ये वही बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुन रहे हैं, जिन्होंने कि नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस केस में एक्विट किया था और ऑन November 29, तो वही बेंच जो है फिर इनका सुन रहा है, तो जाहिर है कि अब इनको फिर एक्विटल इसमें भी मिल जाएगा। अल अज़ीज़िया केस के अंदर नवाज शरीफ को सेंटेंस की गई थी 7 ईयर्स इन जेल ऑन December 24, 2018, और इनको फाइन किए गए थे दो तरह के, 1.5 बिलियन रुपीज एंड $25 मिलियन, और उसमें इनको कहा गया था कि आपके पास जो फंड्स हैं वो कहां से आए हैं वो आप बता नहीं सके, टू सेटअप अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स एंड हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट्स, तो ये लेकिन उसके बाद कह के कि मैं बीमार हूं ये चले गए थे, तो इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा गया था December 2020 में। अब नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो वो कहते हैं जी कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया था और मेरी ये सारी की सारी प्लीज जो थी ये पेंडिंग थी, जिनको कि फिर डिसमिस कर दिया गया था नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, अब मैं वापस आ गया हूं तो इन केसेस को चलाएं और इनको बंद करने की कोशिश करें, जाहिर है। तो कोर्ट ने फिर इनको रिवाइव किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम October 24 को इनको कहा था कि हम ये आपके केसेस खोलेंगे, तो उस सिलसिले की आज जो है वो हियरिंग है। और जनाब फोर्ब्स मैगजीन दुनिया में किस लिए आया है? गरीबों का दिल दुखाने,
दिल दुखाने ना।
हाँ, फोर्ब्स मैगजीन का तो एक ही मंत्र है कि गरीबों का की खिली उड़ाओ, हमारे जैसे गरीबों का जिनको सिर्फ $1 मिलियन चाहिए उनका मजाक उड़ाओ, उनको जलील करो, है ये सिर्फ इसलिए ये मैगजीन दुनिया के अंदर बनाया गया है। स्टीव फोर्ब्स साहब, बहुत ही मुझे अफसोस है कि आपने हम जैसे छोटे लोगों को जो है जलील करने के लिए इतना बड़ा मैगजीन अपना खोला है। अच्छा जी, आज फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो है गौतम अदानी साहब, जिनके के ऊपर आपको पता ही है कि हिंडलबर्ग वालों ने बड़ी एक रिपोर्ट निकाली थी और कहा था जी कि उन्होंने बड़े स्टॉक मैनिपुलेशन किया है और अकाउंटिंग के फ्रॉड्स किए हैं, हालांकि अदानी ग्रुप ने सबको डिनाई किया था, लेकिन उसके बाद इनके जो थे वो सारे ही स्टॉक्स जो थे वो 3 दिन में बेतहाशा नीचे आ गए थे। यानी सोचें आपके जिस वक्त ये रिपोर्ट आई उस वक्त अदानी साहब जो हैं वो 126 बिलियन US डॉलर्स के मालिक थे और सिक्सटींथ रिचेस्ट मैन थे दुनिया के अंदर, और उसके बाद इनकी जो वो सारी की शेयर्स जो थी उनकी कीमतें जब क्रैश की तो 98 बिलियन के ऊपर आ गए थे। आज अब ये जो रिपोर्ट आई है जी इसके मुताबिक इनकी नेट वर्थ में फिर से 11 बिलियन US डॉलर्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं, और सॉरी उस वक्त ये दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन थे, अब ये दुनिया के 16th richest मैन है। तो वो कहते हैं जी कि ये अब फिर ऊपर ऊपर जा रहा है और नंबर 2 को शायद ये टच कर सकते हैं। इस वक्त जो है अदानी साहब अभी भी 126 बिलियन डॉलर्स पे तो नहीं आए हैं, मगर ये रीच कर गए हैं 70.8 बिलियन US डॉलर्स को टच कर रहे थे और अब इसके अंदर पैसे जो हैं वो ऐड हो गए हैं। ठीक है जी, तो अब ये कॉन्स्टेंटली ऊपर ऊपर जा रहे हैं। इस सिलसिले में फोर्ब्स मैगजीन ने कहा जी कि जो इंडिया है उसमें जो रिच लोग हैं उनकी तादाद, जो बिलियनियर्स हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। अब ये तो है सेकंड नंबर के ऊपर है जी, और जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो हैं मुकेश अंबानी जो कि 92 बिलियन US डॉलर्स पे बैठे हुए हैं, शिव नादर 29.3 बिलियन US डॉलर्स, सावित्री जिंदल 24 बिलियन US डॉलर्स, राधा कृष्णन दमानी 23 बिलियन US डॉलर्स, साइरस पूनेवाला 20.7 बिलियन US डॉलर्स, हिंदुचा फैमिली 20 बिलियन US डॉलर्स, दिलीप शांगवी 19 बिलियन US डॉलर्स, कुमार बिरला 17.5 बिलियन US डॉलर्स, शपूर मिस्त्री एंड फैमिली 16.9 बिलियन US डॉलर्स। तो ये जो अदानी साहब अब फिर से ऊपर 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 जाना शुरू हो गए हैं उसके बारे में कहा जी कि ये जो बीजेपी, आपको पता है मोदी जी के साथ बड़ी दोस्ती यारी है इनकी, सारे ये गुजराती हैं ना, तो ये जो बीजेपी 3 स्टेट्स में अभी जीती है लोकसभा में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इनके राज्यसभा के होने वाले हैं इलेक्शंस, तो वो कह रहे हैं जी कि जो उसके इलेक्शंस होंगे उसमें अभी से ये लोगों को सामने नजर आ रहा है इंडेक्स जो है इनका कि शायद बीजेपी ही जीतेगी, तो उसके रहते हुए इंडेक्स ने बहुत ऊपर चला गया और अच्छा काम किया, उसकी वजह से जी इनके स्टॉक्स भी बहुत ऊपर चले गए हैं। क्या बात है माजिद भाई, हैं कभी दुनिया के सेकंड अमीर तरीन बंदे होते थे, आज भी इतना नुकसान उठाने के बाद दुनिया के 16th richest मैन है गौतम अदानी। पाएं तो सीखिए कर दे सानू भी दसो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, अच्छा जनाब, इंडिया जो है जी वो अब जो यूएस ने उसको इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर काम करेगा। आज ये खुलासे किए इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये जो यूएस ने हमको बताया है कि ये अलेज प्लॉट था टू किल गुरपतवंत सिंह पन्नू का, अमेरिकन सॉइल पे इसके अंदर कोई इंडियन इन्वॉल्व था, तो उसके ऊपर हम जरूर देख रहे हैं और इंक्वायरी हमने बिठाई है, हमने एक कमीशन बनाया है जो कि ये करेगी, लेकिन जो कनाडा ने हमको कहा है उसके ऊपर हम इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे क्योंकि उन्होंने हमको कोई भी प्रूफ्स नहीं दिए हैं। और कनाडा न होते वो कुछ समझते ही नहीं ना जी, वो कहते हैं खली वली कनाडा, खली वली है, लेकिन अमेरिका जैसे जिनके साथ तो अब लड़ाई नहीं कर सकते ना, तो ऐसे है जैसे पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं ना जी, चाइना को नहीं दिखाते हैं। अच्छा जी, तो एस जयशंकर साहब आज राज्यसभा के अंदर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि हमको जब यूएस ने हमसे बात की और हमारे बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बातें चल रही थी, तो उसके अंदर यूएस ने हमको बताने की कोशिश की कि ये जो सारे का सारा नेक्सस है ऑर्गेनाइज क्राइम ट्रैफिकिंग और दूसरी जो इस तरह की चीजें हैं उस पर आपको गौर करना चाहिए, और हम इसलिए इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि इसके अंदर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी एट रिस्क है, इसलिए हमने ये एक इंक्वायरी कमेटी जो है बिठाई है और हम इसका कर रहे हैं। लेकिन जो निजर साहब का केस है जिसके के ऊपर कनाडा कह रहा है कि हमारे पास जो है बड़े प्रूफ है, तो वो प्रूफ उन्होंने दिया नहीं है, इसलिए कनाडा की साइड की जो स्टोरी है यानी उस पे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, आज जो है दुनिया काफी भड़की, सिर्फ जैसे मेरे से नहीं, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग और पाकिस्तान में तो बहुत ही सारे लोग, ये जो वही जो अमित शाह का कल का बयान था उसके ऊपर बात करते हुए मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने अमित शाह को बैक किया है और उनकी स्टेटमेंट के ऊपर मियां के जो स्पोक्स पर्सन है अनिर धैम बागची, उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अमित शाह साहब के कमेंट्स के ऊपर इतनी खलबली क्यों मची है, जो ये पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारा स्टैंस उसके ऊपर पहले दिन से ही बिल्कुल क्लियर था, तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि मुझसे क्लैरिफिकेशन क्यों मांगी जा रही है और वैसे हमको इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है। उन्होंने इन सारी बातों का जवाब उस वक्त दिया जब उनके ऊपर एक क्वेश्चन किया गया कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी और खास तौर पे पाकिस्तान में तो रिजेक्ट किया गया है अमित शाह की स्टेटमेंट को जो उन्होंने दिया था यहां पे पार्लियामेंट के अंदर। तो शाह साहब ने कहा था कि ये जो पाकिस्तान का पास जो कश्मीर है वो भी हमारा है और डीलिमिटेशन जो कमीशन है उसको हमने हर जगह पे जम्मू एंड कश्मीर में भेजा था और उनकी मुलाकातें सबसे हुई थी जिसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स भी थे और जो डिस्प्लेस्ड पाकिस्तानी कश्मीरी हैं जो कि वहां पे आके रहे हैं और उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन को कहा था कि हमको जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने फिर ये डिसाइड किया कि दो सीटें स्टेट असेंबली में कश्मीरी माइग्रेंट्स को दी जाएंगी और एक जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान से आई हैं उनको दी जाएंगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अनऑथराइज तरीके से और इलीगली कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ठीक है पायन, हुन खुश हो ते पायन हुन फिर नाराज ना हो जाना मेरे नाल। ये अमित शाह साहब ने, मैं आपको फिर से बता रही हूं, अमित शाह साहब ने कहा था। ठीक है जी, ऐसे है। और जनाब अरबाज खान साहब सलमान खान के सलू भाई के भाई हैं जी, इनकी जो गर्लफ्रेंड है जॉर्जिया एंड्रियानी, इनके साथ इनका जी स्प्लिट आ गया। आपको पता ही है कि ये पहले मलाइका अरोरा खान के साथ ब्याहे हुए थे, फिर उनके बीच में स्प्लिट हो गया था और फिर मलाइका अरोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे। तो अब जॉर्जिया एंड्रियानी ने कहा जी कि हमें शुरू से ही पता था कि हम बहुत डिफरेंट लोग हैं लेकिन फिर भी ऐसी किया नहीं, ऐसी कटे रहेंगे। तो हमें पता ही था कि हम हमेशा से साथ में नहीं रह सकेंगे, तो लेकिन अरबाज जो हैं आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और उनकी बेगम की वजह से हमारे बीच में कभी डिफरेंसेस नहीं आए। इन दोनों को आखिरी बार जो है आईपीएल का मैच जो अप्रैल में हुआ था उसमें साथ साथ देखा गया था और अब इनकी स्प्लिट की खबरें जो हैं वो सारी क्लियर हो गई हैं। और जनाब जैकी दादा, जैकी श्रॉफ एंड नीना गुप्ता जी जो हैं वो 2017 जो एक शॉर्ट फिल्म आई थी खुजली उसके अंदर देखे गए थे और अब फिर से ये दोनों यूनाइट हो रहे हैं मस्त में रहने का है जी। तो ये फिल्म में अब ये दोनों फिर से नजर आएंगे। इस फिल्म को बना रहे हैं वही जिसने बनाई थी गली बॉयज, विजय मौर्या वही इस फिल्म को बना रहे हैं और ये फिल्म कल यानी कि फ्राइडे को आएगी अमेजॉन प्राइम के ऊपर और वो कहते हैं जी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है जिसमें के दो डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं, दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं जिनको के एक साथ दिखाया गया है एंड दे टॉक अबाउट द फिल्म टॉक्स अबाउट लव फॉरगिवनेस रिडेम्पशन एंड ऑफकोर्स एडवर्सरीज ऑफ लाइफ, वो सारी बातें करेगी। और जब क्रिकेट फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए आज बाबर आजम को एक नए एवेटर में देख के, क्योंकि पीएसएल की जो साइड है के साथ जो पिशावर जलमी के साथ ये जो खेलते हैं तो उन्होंने ये जो आई है गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA 6 उसका जो एक ट्रेलर आया था उसके एवटायर में एक एनिमेशन बनाई है उन्होंने बाबर आजम की पेशावर जलमी वालों ने और लोगों को देख देख के उनको बड़ा मजा आ रहा है। 29 इयर्स इनकी एज है, राइट हैंड बैट्समैन है और दुनिया सारी में बड़ा इनसे मोहब्बत की जाती है और कैप्शन जो उन्होंने दिया है पेशावर जलमी ने इसके ऊपर वो दिया है जंपिंग ऑन ट्रेंड विद #GTA6 थीम और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये इसका फिल्म ये जो गेम है वीडियो गेम है इसका ट्रेलर आया है और ये रिलीज होगी 2025 में। तो हमें लगता है कि अगर उसके अंदर बाबर आजम हुआ तो वो ऐसे एवेटर में नजर आए, तो इसका मतलब है कि क्या बाबर आजम उसमें नजर आ सकते हैं। इसके ऊपर तो लोगों ने आज बड़े हिंट्स लगाए लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े जो नेम्स हैं फुटबॉल की दुनिया के जैसे कि मेसी और रोनाल्डो वो भी उनके भी मेकओवर्स जो हैं यहां पे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में नजर आए। साउथ अफ्रीका के जो टॉप बैट्समैन है जी रीजा हेंड्रिक्स एंड श्रीलंका के स्पिनर महिषा थीका सकने वो अब नजर आ सकते हैं 485 डिफरेंट प्लेयर्स जिन्होंने के अर्जियां भेजी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए एचबीएल पीएसएल ड्राफ्ट के लिए जो कि होगी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दिसंबर 13 को. हेंड्रिक्स जो हैं वो 9th हैं आईसीसी T20 रैंकिंग के अंदर. थिक्षाना जो है वो 5th हैं T20 रैंकिंग के बोलर्स में और इससे पहले इन दोनों ने ही पीएसएल नहीं खेला है. इसके साथ साथ और भी जो लिस्ट में लोग हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं. राइली रूसो हैं जिनको के अब जिन्होंने स्विच किया है टू क्वेटा ग्लेडिएटर्स फ्रॉम मुल्तान सुल्तान. और डेविड मलान हैं यूके के प्लेयर्स जो हैं वो भी काफी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया 9th सीजन के लिए. इसके अंदर जो नोटेबल्स हैं ब्रिटिश नोटेबल्स जो हैं वो हैं डेविड वाइली गज एकिनसन और भी बहुत सारे 46 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो प्लैटिनम कैटेगरी में और 76 अब डायमंड कैटेगरी में होंगे. इसके अलावा जो है अकील हुसैन कैरोन पोलार्ड रॉबमैन पावल रोमेरियो शेपर्ड ब्रैंडन किंग काइली मायर्स ये सारे के सारे जो हैं वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं ये भी नजर आ सकते हैं. इसके अलावा अफगानिस्तान से नजर आएंगे मोहम्मद नबी फजलुल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान. तो बड़ा लोगों का इंटरेस्ट आ गया भाई पीएसएल के अंदर तो वेरी गुड गुड थिंग. तो ये अब आ सकते हैं. एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान हॉकी. पाकिस्तान जो है वो आज उसका कल उसका नेदरलैंड्स के साथ मैच था इन द ऑन गोइंग FIH जूनियर वर्ल्ड कप. और जो है ये नेदरलैंड्स बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच खेल रहा था इन ग्रुप डी क्लैश एट मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम और 2-0 से ये नीचे चल रहा था पाकिस्तान जो है. और इसके अंदर जो स्कोर पे स्कोर करते जा रहे थे और इसमें दो जो पहले स्कोर किए थे बोरिस एंडरबर्ग और कैस्पर वैंडियर ने किए थे 21st और 30 मिनट्स में. उसके बाद फिर पाकिस्तान के अरशद लियाकत ने जो सेकेंड हाफ था उसके दूसरे मिनट में एक गोल किया. उसके साथ ही सुफियान खान ने फिर चौथे मिनट में जो है वो किया और 2-2 की बराबरी से चला. लेकिन उसके साथ एकदम से नीदरलैंड्स के जो ओलिविया ओलिवर हॉटसन थे उन्होंने थर्ड गोल किया 47th मिनट में. लेकिन बड़ी स्पिरिट दिखाई पाकिस्तान ने और अरबाज जो है पाकिस्तान का उसने फिर जो है पेनल्टी स्पॉट से तीसरा किया. तो 3-3 से इन्होंने ड्रॉ किया नीदरलैंड्स के साथ. तो मींस पाकिस्तान हॉकी इज इंशाल्लाह कमिंग अप होले होले.
और ये यंग हॉकी टीम है.
हाँ ये बिल्कुल यंग हॉकी टीम है तो होले होले
Juniors.
से हाँ जी
है ना जी
हाँ जी बिल्कुल
he is a bright future.
बिल्कुल absolutely. तो मुझे लगता है कि हॉकी की भी
look forward to a bright future in hockey.
बिल्कुल हमारी नेशनल गेम थी और फिर खत्म होती गई.
अभी भी है तो इंशाल्लाह
ये भी
उम्मीद पे दुनिया कायम है.
जी जी
है ना उम्मीदी.
हाँ जी हाँ जी बस मजे क्योंकि कुछ तुझे ऐसा कह देता फिर तुझे भी पढ़े जाओगे.
चलिए साहब इसके साथ ही बस वक्त आया आप इजाजत चाहने का. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
थैंक यू
शाहजे जी एंड
आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह.
जब भी आप कहती हैं तो मुझे बस कुछ होता है कि
कुछ होता है भाई देखें मेरी बात सुने. आपको फॉर्मूला जो है ना फॉर्मूला और रिलेटिविटी वो आपको आमिर ने समझाया हुआ है महीने का आखिर है. हाँ तो okay. उसमें मेरी यहाँ छुट्टियां हो सकती हैं. इस दफा आप लोगों ने आपने और आमिर ने कॉन्स्परेसी कर करके मेरा महीने के आखिर इतना प्रेशर डाला कि मेरा महीने के आखिर का प्लान मेरा आपने खराब कर दिया है. तो अब आप इस महीने के आखिर का इंतजार करो अभी.
ओके
ठीक है.
ओके हम आपको डेट ही नहीं बताएंगे जब गुजर जाएगी फिर बताएंगे.
हाँ फिर बताएंगे आज 2 जनवरी है.
सब अब लिए चलता हूँ आपको मैं. प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद. स्टे ट्यून यही नंबर पे आप रहें और इंशाल्लाह ताला बाकिया की बातें आपसे कल होंगी. अल्लाह हाफिज.
मुझे प्यार कर जिसे कभी ना मिल सकूं फिर भुला जिंदगी
दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है क्या हाल है।
तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा
जानता था तू ही था मेरा, अब जो मिला तो लगा देर से ही सही, मगर तू मिला मिला तो है ना धीरे धीरे सही, मगर फासला मिटा तो है ना देर से ही सही, मगर तू तो है ना धीरे धीरे सही, मगर फासला मिटा तो है ना।
रखवालिया रात घूम बेचारा एक वालिया ढल रही शाम है दिल तेरे नाम है इसकी आदत बनी है तेरी यारियां चांद हूँ
दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको कांधे का वो दिल लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल छाओ में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें लो मान लिया हमने एतबार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको ना करेंगे हम जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा लो मान लिया हमने परवाह नहीं तुमको तुम याद नहीं